ओम शांति। आज की कथा का शीर्षक है अपराधी कौन। दो मित्र थे, उनमें एक का नाम था धर्म बुद्धि था और दूसरे का नाम पाप बुद्धि। दोनों की बुद्धि उनके नाम के अनुसार ही थी। गांव में धन कमाने का कोई साधन नहीं था, अतः दोनों ने सलाह की और अपने अपने माँ बापों से अनुमति लेकर धन कमाने के लिए दूर देश में जाकर मशक्कत से धन कमाने लगे और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन दोनों ने सलाह बनाई कि हमारे पास बहुत सा धन जमा हो गया है, इसलिए अब अपने घर लौट चलना चाहिए। यह सलाह करके दोनों वापस चल पड़े। जब अपने गांव की सीमा पर पहुंचे तो पाप बुद्धि ने कहा, मित्र सारा धन घर ले जाना उचित नहीं है। धन को देखते ही रिश्तेदार और यार दोस्त धन मांगने लगेंगे, अतः हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा धन लेकर चलते हैं और बचा हुआ धन यहाँ गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते हैं, जरूरत पड़ने पर आकर निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि ने बात मान ली और थोड़ा थोड़ा धन लेकर बचा हुआ धन एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और अपने अपने घर चले गए। कुछ ही दिनों बाद पाप बुद्धि के मन में पाप आ गया और एक दिन जाकर गड्ढे से सारा धन निकालकर गड्ढे को मिट्टी से उसी प्रकार ढक दिया जैसे धर्म बुद्धि के सामने ढका था। अगले दिन उसने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र मेरे घर में अचानक धन की आवश्यकता पड़ गई है, अतः चलकर दबे हुए धन को ले आते हैं। धर्म बुद्धि को कई आपत्ति थी ही नहीं, इसलिए उसने पाप बुद्धि की बात मान ली। दोनों जंगल में गए और मिट्टी हटाकर गड्ढा खोदा, पर गड्ढे में दबे धन को तो पाप बुद्धि पहले ही निकाल ले गया था। उसने चालाक बनते हुए कहा, धर्म बुद्धि तुम तो बड़े पापी हो, मुझे बिना बताए यहाँ से सारा धन निकाल ले गए, पर तुम्हारी चालाकी चलने नहीं दूंगा। चलो घर चलकर उस धन में से आधा मुझे दो। धर्म बुद्धि तो निर्दोष था। पाप बुद्धि की बात सुनकर उसे क्रोध आ गया। वो बोला, नहीं ये झूठ है, मैंने न कभी जीवन में झूठ बोला है न चोरी की है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। बात न्याय पंचायत में पहुंची। ठीक फैसले के लिए गवाह की आवश्यकता पड़ी तो उस वृक्ष को ही गवाही के लिए चुना गया जिसकी जड़ में धन गाड़ा गया था। तय हुआ कि सुबह होते ही सब उस पेड़ के पास चलेंगे और उसकी गवाही से इनका फैसला कर दिया जाएगा कि चोर कौन है। पाप बुद्धि के मन में तो पाप था ही। उसने अपने घर जाकर के अपने पिता को सारी बात बताकर समझा दिया कि तुम उस वृक्ष की जड़ को गड्ढे से पास पेड़ की खोखल में छिपकर बैठ जाना और जब वृक्ष से पूछा जाए कि इन दोनों में से चोर कौन है, तब झट से बोल देना कि धर्म बुद्धि ही चोर है। सुबह हुई तो पंचायत के लोगों के साथ ही धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि भी वहां पहुंच गए। पाप बुद्धि का पिता पहले से ही जाकर वृक्ष की खोखल में छिप गया था। जाते ही पंचों ने वृक्ष की ओर देखते हुए कहा, वृक्ष देवता इन दोनों में से कौन चोर है, पाप बुद्धि या धर्म बुद्धि। वृक्ष की खोखल में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने तुरंत ही कहा, धर्म बुद्धि चोर है। वृक्ष की गवाही से धर्म बुद्धि यद्यपि चोर साबित हो गया था, परंतु किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। धर्म बुद्धि भी हैरान था कि आखिर यह मामला क्या है। तभी धर्म बुद्धि की बुद्धि काम कर गई। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उस वृक्ष के चारों ओर फैलाकर उसने आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पाप बुद्धि का पिता झुलसता हुआ वृक्ष के खोखल में से निकलकर बाहर आ गया। वो आग में जल रहा था और पीड़ा के कारण चीखे मार रहा था। पंचायत के लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। वह कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि पर अंत में पाप बुद्धि के पिता ने अपने पुत्र का रचा हुआ षड्यंत्र सबको बता दिया और तभी उसके प्राण निकल गए। पंचों ने दंड स्वरूप पाप बुद्धि को उसी वृक्ष पर लटका दिया और कहा, अब तुम किए की सजा भुगतो। तो कहने का मतलब, हम किसी भी गलत अनैतिक तरीके से धन कमाना या अवैध रीति से संग्रह करना चाहते हैं, बहुत युक्तियां लड़ाते हैं और ये सबसे बड़ा एक 99 का चक्कर है। कहा जाता है कि लोभ लालच बुरी बला है, तो उसमें धर्म पाप की बात से दूर चला जाता है। व्यक्ति अधर्म के स्टेप को और झूठ जाल फरेब के स्टेप को तुरंत अपना लेता है। तो ऐसा ही पाप बुद्धि ने भी किया कि धन निकाल के लाया, ला करके फिर उस धन के लिए अपने धर्म बुद्धि वालों वाले दोस्त को आरोपित किया। आरोपित करने के बाद जब उस वृक्ष से पूछेंगे तो फिर भी उसके अंदर खोखले के अंदर अपने पिता को छिपा करके वहां से बुलवा दिया कि भाई धर्म बुद्धि ही चोर है। जब इतना सब हो जाने के बाद आखिर जब सच्चाई के रास्ते पर जो व्यक्ति चलते हैं उनको ईश्वर रास्ता देता है। सभी कहा जाता है कि संसार के जब सब गेट बंद हो जाते हैं तो उस समय ईश्वर के दरवाजे का गेट, ईश्वर के द्वार का गेट खुला रहता है व्यक्ति के लिए। तो उसके माइंड में ठीक प्रकार की बातें क्लिक हुई और जैसे ही आग लगाया, आग लगाते ही अंदर से जलता हुआ सुलझता हुआ उसका बाप निकल आया और उसने बताया कि ये सारी मेरे बेटी की षड्यंत्र के कारण है और ये धर्म बुद्धि ने चोरी नहीं की है, ये तो सब पाप बुद्धि का ही करामत था। तो इस प्रकार बहुत व्यक्ति अपने अल्पकाल के सुख के लिए अपने नैतिकता को बेचकर, ईमानदारी को बेचकर, सच्चाई को बेचकर, सफाई को बेचकर, अपने आप को झूठ जाल फरेब के अंदर में होते हुए भी सच्चाई का मुखौटा लगा करके, माने एक उसके अंदर छिप करके अपने आप को सच्चा प्रमाणित करने लगते हैं। परंतु ये अल्प आयु होता है, इसकी दीर्घजीवी अवस्था नहीं रहती सकती है, उसका अंत हो जाता है। एक समय ऐसा होता है जिस प्रकार की सूर्य उदय हो जाता है तो सारे संसार के अंधकार स्वाभाविक दूर हो जाते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए बादल आगे आकर के उसके सूर्य के किरण को छिपा देता है, कुछ समय के लिए होता है। तो कहा जाता है कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। तो इस प्रकार से सच्चाई सफाई ही वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है, तप है। इसी से हमारे जीवन की में जो भी झूठ जाल फरेब के बादल आते हैं उनसे तुरंत ही हम मुक्त होकर के एक सूर्योदय और सूर्य के किरण में एक सवेरे के अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन जने ये सदा ये अनुभव करे कि मुझे क्षणिक काल के लिए कोई जाल फरेब और झूठ और गलत राहों में चल करके अपने आप को सच्चाई सफाई वाला प्रमाणित नहीं करना है, ताकि मेरे अंदर ही सच्चाई सफाई के गुण विशेषता और स्वभाव संस्कार हो, जिससे ही सदा काल के लिए मेरी सच्चाई कायम रह सकेगी और मैं सच्चा व्यक्ति कहला सकूंगा। यही सच्चाई का गुण सबसे बड़ा धर्म है। ओम शांति।